ओम शांति। आदरणीय सूरज भाई जी को हम आईटी फैमिली के बीच में बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। भाई जी, हम सब जब भी मधु बनाते हैं, हम सबका तन के लिए भोजन की व्यवस्था पूरा देखभाल करते हैं और साथ साथ मन के लिए भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी हमेशा खिलाते हैं। भाई जी, आज हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि हमारा ये आईटी फैमिली जो है, तो इसमें लेफ्ट साइड ब्रेन तो फुल्ली डेवलप्ड है, बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं, लेकिन राइट साइड ब्रेन में थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम होता है, डेवलपमेंट इतना पूरा नहीं है, इसीलिए कई बार बैलेंसिंग प्रॉब्लम हमारा हो जाता, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में बैलेंस करना मुश्किल होता। और वैसे हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत व्यस्त रहते हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप ऐसा इजी हमें मेथड सुनाइए कि फास्ट परिवर्तन हो जाए उससे और फास्ट डेवलपमेंट भी हो जाए हमारे अंदर, तो ऐसा हम आपसे सुनना चाहते हैं भाई जी। आदरणीय सूरज भाई जी।
ओम शांति। इंजीनियर्स कौन कौन बैठे हैं, हाथ उठाएंगे? अच्छा, बहुत हैं। तो आप सबका लेफ्ट ब्रेन बहुत डेवलप है। अच्छा, मेरे पास भी आईटी से संबंधित कई भाई बहने पर्सनली आते हैं। सबका एक ही प्रश्न है, जो बहन जी ने कहा कि बहुत बिजी लाइफ, बुद्धि का काम और पुरुषार्थ भी करना है, उधर से भगवान का फोर्स, इधर से कामकाज का फोर्स, दोनों के बीच में कभी कभी क्या हो जाता है, पिस जाते हैं, स्पिरिचुअल डिप्रेशन होने लगता है। मैं इसको नाम दे रहा हूं आजकल, जो बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों के साथ होने लगा है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। तो हमें अपने लाइफ को एंजॉय करना है, किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है। एक बहन आपके ग्रुप से मेरे पास आई, जिसका बहुत बड़ा त्याग है, शायद बैठी भी हो, अगर मैं उनके त्याग की बात सुनाऊं तो आप भी कहेंगे कि सचमुच बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन अब जो उसकी ड्यूटी है, सवेरे 8 बजे जाना, शाम को 9-10 बजे आना, बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। पूछने आई थी कि भोजन बाहर का खाना पड़ता है, क्या करूं, क्योंकि इतने थक जाते हैं, फिर किचन में काम करना, खाना बनाना, खाना, ये बहुत टायरिंग हो जाएगा ना। तो मैंने उनसे पूछा, बहुत बड़ा त्याग है आपका, जब उसने त्याग किया तब भी मेरे पास आई थी पूछने के लिए। त्याग को अपने हम महत्व देते हैं, हम अपने त्याग को वैल्यू दें कि त्याग करने के बाद स्पिरिचुअल तेज हमारे जीवन में आ जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा त्याग हमें डिप्रेशन की ओर ले चलेगा, डेफिनेटली। क्योंकि मनुष्य, कोई भी मनुष्य, एक महान लक्ष्य के पीछे ही बड़ा त्याग करता है, छोटे लक्ष्य के पीछे नहीं। अब सोचना है, ये आप में से कईयों की प्रॉब्लम हो सकती है, 12-12 घंटे आपको कार्य करना हो, वो भी बुद्धि का काम, लेकिन हम अपने विचारों में कुछ चेंज करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी का टॉपिक है और ज्वालामुखी योग, तो हम अपने मन को थोड़ा लाइट करें, ये नहीं कि बार बार ये सोचते रहे ये क्या लाइफ है, सारा बिगड़ गया, सोचा क्या था, हो क्या गया, अच्छे इंजीनियर बने, ना इधर के ना इधर के, ना उधर एंजॉय कर रहे ना उधर कर रहे, छोड़ दे इस बात को, वी हैव टू एंजॉय ऑन एनी कॉस्ट, लाइट करो अपने को। कुछ कुछ बहनें विशेष रूप से मेरे पास ऐसे भी आती हैं, कल भी एक का फोन था कि उसकी माँ अकेली है, उसको घर में उसके साथ काम में भी पार्टिसिपेट करना है, करना ही चाहिए, उसकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, वो चाहती है मैं नौकरी भी करूं, और मुंबई जैसे शहर में नौकरी करना माना 12 घंटे, और मैं ये भी चाहती हूं कि सेवा भी करूं, और मैं ये भी चाहती हूं कि बाबा जो आजकल कह रहा है वो भी करूं। टेंशन हो गई है मुझे, देखो अच्छे काम करने की टेंशन। मैंने उसे रिलैक्स किया, एक चीज तो छोड़ दो, एक चीज छोड़ दो, कोई भी कुछ दिन के लिए एक चीज को छोड़ दो तो शेष दो को एंजॉय करो, फिर आप ही मार्ग निकल जाएगा अच्छे से अच्छा। फिर आप ही कहने लगी मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूं, तो मैं कहा एक हल तो निकल गया बात करने से ही आपकी ओर से। तो हमें अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना है। जब आप अपने ऑफिस में जाएं, बैठें अपनी चेयर पर, तो संकल्प कर ले आई हैव टू एंजॉय नाउ एवरीथिंग। माइंड को रिलैक्स करेंगे। मैं आपको बाबा की एक बहुत गहरी फिलोसॉफी की बात सुना देता हूं, जिसको सुनकर आप चिंतन करेंगे ही, मेरे ख्यालों में और अब आपके ख्यालों में भी होगी वो बात। योग की फिलोसॉफी की सबसे डीप है। बाबा ने कहा जो बच्चे साक्षी भाव में रहते हैं वो एक मास का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। विचार करें आप इस पर। मनुष्य की सारी शक्तियां वेस्ट थॉट्स में, अननेसेसरी थॉट्स में जा रही हैं। मन के अलावा यदि हम ब्रेन की चर्चा करें तो हमारे ब्रेन में अनंत शक्तियां हैं। अगर हम उसे केंद्रित कर दें तो हम बहुत सारे काम थोड़े समय में कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, आप एंजॉय करेंगे कंप्यूटर के साथ काम करते हुए, बहुत बिजी लाइफ में आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे, उसको खेल बना देंगे। आप इस पे ध्यान दें कि हमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए वेस्ट को समाप्त करना है। वैसे आईटी वाले जो बहुत समय कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके व्यर्थ बहुत कम हो जाते होंगे, भाला भाई ऐसा है ना, कम हो जाते होंगे। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, बहुत गुड थिंग हो गई कि बहुत सारे व्यर्थ से आप बचे हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आजकल जो ये शिकायत करते हैं कि हमको व्यर्थ इतना चलता है कि हम उसे रोक नहीं पाते, हमारी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो देखिए एक चीज से हमें सावधान रहना है कि आने वाले समय में ये व्यर्थ बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि क्या होगा आने वाले समय में आप सब जानते हैं, पांचों विकार और पांचों तत्वों का फोर्सफुल अटैक सबके ऊपर होगा। बाबा ने पहले से ही सावधान किया है किसी भी विकार का अगर अंश रह जाएगा वो वंश बन सकता है। इसलिए इस बात पे सभी को ध्यान देना है कि किसी भी एक तरफ हमारे बहुत सारे संकल्प चलते न हों। फुल स्टॉप लगाएंगे, आप भी कहेंगे और मैं भी कहता हूं कि कहना तो सही है फुल स्टॉप लगाओ, पर लगता थोड़ा ही है। चलो फुल स्टॉप।
शांति जग में नानी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में है।
तो ये एक सजेशन है आप सबके लिए, जैसे अब एक मिनट का गीत ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बजा, क्या आप अपने प्रोफेशन में हर घंटे में 2 मिनट दे सकते हैं अपने लिए? दे सकते हैं पक्का? तो आप 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कुछ पॉइंट्स रख लो। 7 दिन के लिए रख लो, मैं कहो तो मैं आपको 7 पॉइंट्स लिखा दूं जो आप हर घंटे में 2 बार करेंगे। ऐसा करेंगे जैसे उदाहरण के लिए छोटी सी अभ्यास की बात है, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, तो अपने कामकाज से अपनी कॉन्शियसनेस को संपूर्ण रूप से हटाकर अपने इस अभ्यास में ले आएंगे तो आप देखेंगे आपकी ब्रेन की शक्तियां बहुत बढ़ेंगी और आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी। हर आधे घंटे का ये अभ्यास 1 मिनट का, यानी घंटे में 2 बार, आपको इंजेक्शन जैसा काम करेगा, एनर्जेटिक बनाएगा, फ्रेश रखेगा, आपको थकान नहीं होगी और आपको ये फील नहीं होगा कि हम कुछ कर नहीं रहे स्पिरिचुअली, हम खाली जा रहे हैं, बाबा बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहा है, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा है। बोलो कर सकेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास करना चाहते हैं हम। क्लासेस तो बहुत अच्छी अच्छी कराई जा सकती हैं, लेकिन जो आप कर सकें। बोलो रेडी हैं सभी? घंटे में 2 बार हाथ उठाओ जरा, रेडी हो तो। ठीक है, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, आपके ऑफिस में वाइब्रेशंस बहुत अच्छे फैलेंगे। आप सब कुछ जानते हैं उस फील्ड में, मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स सारे संसार को जोड़ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से यदि आप अपने कमरे में बैठे सारे संसार से जुड़ सकते हैं, तो क्या वाइब्रेशंस के माध्यम से नहीं जुड़ सकते? पावरफुल्ली जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक इंजीनियर का एग्जाम्पल दूं। उसने अपनी एक शिकायत बताई मुझे कि मैं जब अपने ऑफिस में जाता हूं तो एक हॉल है हमारे पास, उसमें 10-12 इंजीनियर काम करते हैं, बोर्ड लगे होते हैं सामने, उन्हें डिजाइंस मैप्स कुछ कुछ बनाने होते हैं, तो कहा सब गंदी बातें करते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, क्या करूं? देखिए बहुत सुंदर अनुभव और एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने उसे 2-3 चीजें सिखाई कि आप ये करना, जैसे ही आप अपने हॉल में प्रवेश करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस स्वमान के साथ ही प्रवेश करना। जब आप अपनी चेयर पर बैठो फिर अभ्यास करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। एक बार जाते ही, बीच में और शाम को जब समाप्त हो, 3 बार सभी को एक नजर से देखना, ये भी देव कुल की महान आत्माएं हैं। बस मैंने उसे कहा एक्सपेरिमेंट करो, फिर मुझे रिजल्ट बताना। अनुभव था उसका 4-5 दिन के, 5 दिन के बाद ही सब कुछ बदल गया। कहा मैं प्रवेश करता हूँ, लोग चुप हो जाते हैं, क्या कहते हैं, भगत जी आ गए, गलत बात न करना, अब सिगरेट सब बंद कर दे, नाम मेरा भगत जी रख दिया, चलो कुछ तो अच्छा हुआ ना, नाम से तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहा सबकी गंदी बातें बंद हो गई, सिगरेट बंद हो गई, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हो गए, मेरी ओर देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। देखिए एक छोटी सी अवेयरनेस वाइब्रेशंस क्रिएट करती है ना, हमसे वाइब्रेशंस फैलते हैं और इसका तुरंत इफेक्ट होता है। तो अगर आप हर घंटे में 2 बार करेंगे एक एक मिनट, तो आपका कार्य भी सहज होगा, मिस्टेक्स नहीं होंगी, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा, जिसके लिए आप काम कर रहे उनको भी बहुत सेटिस्फेक्शन होगा, आपकी प्रोग्रेस होगी, कंटेंटमेंट होगी, तो आप लिख लें 7 दिन के लिए 7 पॉइंट। 6 दिन आपको काम करना होगा, 1 दिन जब छुट्टी होगी तो भी करना प्रैक्टिस। पहला दिन बहुत सिंपल सिंपल बात हम करेंगे जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जिससे वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे फैलते हैं और जिससे हमारे संकल्प भी शांत रहते हैं। पहला दिन, मैं एक महान आत्मा हूँ। बाप दादा नीचे आ गए और उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। मैं ये सोचता हूँ, चाहता हूँ कि सारा ब्राह्मण परिवार इस एक बात में मास्टरी कर ले। बालाकिशोर भाई सिखा देना सबको जहाँ जाओ, ताकि विनाश काल में फट से यह स्थिति बन जाए, बाबा का हाथ सिर पर है, सिक्योर हो जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा, फील होने लगेगा। जो अब से अभ्यास करेंगे वो संकल्प करते ही रियलाइज करेंगे, बाबा साथ है, हाथ सिर पर है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो फियर, सब समाप्त हो जाएगा। इस पर आप हर घंटे में 2 बार करेंगे तो देखना शाम तक क्या होता है, कैसी गुड फीलिंग, आनंद से भरी हुई फीलिंग, और ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस आपके कार्य को अफेक्ट करेंगे। दूसरा दिन, सबसे पावरफुल स्वमान जिसकी चर्चा बाबा रोज करते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी। इसके साथ एक शब्द जोड़ेंगे, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं। और शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी विजन, ये बाबा बहुत कहते हैं, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया। शिव बाबा को देखेंगे इधर ही छत्र, मोस्ट पावरफुल छत्र, ऑल माइटी छत्र। एक एक मिनट जैसे बस इस छत्र के नीचे बैठे और इस फीलिंग को बढ़ाते चलेंगे, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मास्टर ऑल माइटी हूँ, इससे आपके अंदर का संपूर्ण भय समाप्त होता जाएगा, क्योंकि भय भी जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। भय इनसिक्योर फीलिंग देता है, भय कंफ्यूजन लाता है जीवन में, ये करूं या ये करूं, बहुत लोग भयभीत रहते हैं और आने वाले समय में भय बढ़ता जाएगा। इसलिए इस बात पर विशेष अटेंशन देना है सबको, न केवल कार्य के लिए लेकिन अपने को एम्पावर करने के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरा दिन, बाप दादा का आह्वान। हम इसको अभी प्रैक्टिस में लाएंगे। जैसे आप शिव बाबा को निमंत्रण देंगे कि आ जाओ, और देखेंगे ब्रह्मा के तन में बैठकर दोनों आ रहे हैं, आ गए बिल्कुल आपके पास। अगर आप कभी बहुत थक गए हो तो एक एंटरटेनिंग प्रैक्टिस में आपको सिखा देना चाहता हूँ, जो कभी कभी मैं कर लेता हूँ। मान लो आप बहुत थक गए हैं, बाबा का आह्वान करो, बाबा आ जाओ और मुझ में समा जाओ, और देखना बाप दादा समा गए, उनकी संपूर्ण एनर्जी बस फैलने लगी, हमारे तन मन में वाइब्रेट होने लगी बाहर। ऐसा सुंदर विजन बनाना, और बाकी कभी आ जाओ, जैसे आपके सामने आ गए, बाबा से किरणें फैल रही हैं, कभी करना बाबा ने अपना हाथ सिर पर रख दिया है, कभी करना बाबा ने आके मुझे गले लगा लिया है, अलग अलग रीजन बना लेना। कभी करना वो मेरा खुदा दोस्त है, आते ही हाथ मिलाया, हेलो हेलो फ्रेंड, क्या हाल है, बोलो क्या मदद करूं आपको। कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो जाए, कामकाज में डिस्टरबेंस हो जाए, आपका कंप्यूटर गड़बड़ करने लगे, बुला लेना, आ जाओ और उसके आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नए सुंदर अनुभव का चैप्टर प्रारंभ होगा लाइफ में। तीसरा दिन, चौथा दिन, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य आंखों के सामने, उनसे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, बिल्कुल सामने देखेंगे, हमारे और उसके बीच में ज्यादा दूरी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, केवल ज्ञान सूर्य। ये सब ज्वालामुखी योग भी है, आपका ऑफिस में ही होता रहेगा। ज्वालामुखी पर्वत नहीं फटेगा, बाबा ने अच्छा नाम दिया, पहले ज्वाला स्वरूप योग कहते थे, उसको ज्वालामुखी कर दिया। अब पांचवा दिन, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, ऊपर से बाबा से पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, छठा दिन, जो बाबा ने आखिरी मुरली में भी कहा है, मैं दुख हरता सुख करता हूं, बस कुछ क्षणों के लिए ऊपर से बाबा की किरणें आई और मुझसे चारों ओर फैलने लगी। साथ में संकल्प करेंगे, सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों, सातवां दिन, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं और परम धाम में बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना, ये भी ज्वालामुखी योग हो जाएगा। बाबा को आप कैसा देखेंगे, एक बहुत अच्छी विजन मैं आपके सामने रखता हूं, आपको उसमें बहुत आनंद आएगा। जैसे आकाश में सूरज निकल जाता है तो दिन निकल जाता है ना, प्रकाश फैल जाता है चारों ओर, ऐसे ही परम धाम में जैसे ज्ञान सूर्य निकल गया है और उसके प्रकाश से सारे ब्रह्मलोक में उजाला हो गया है, ऐसी विजन देखना आप, तो बहुत आनंदकारी हो जाएगा योग। मैं ज्वालामुखी योग सूखा योग नहीं रहेगा, बहुत आनंदकारी। तो ये आप सात दिन करेंगे, सातवां दिन जो आपके पास होगा, यदि आपकी छुट्टी होती है छुट्टी या सातवां दिन बीबी जी छुट्टी होती है, कई जगह ऐसे है ना सातों दिन बीजी रख देते हैं, तो सातवें दिन में सातों अभ्यास कर लेना और आनंद आएगा। इस तरह अपने को बहुत इजी करते हुए आप इसको प्रयोग करें, एंजॉय करें। क्या बहन जी ठीक है, पसंद है? अब आप, मैं चाहता हूं ये काम केवल यहां तक नहीं, इसका लेवे चार्ट सभी, देवे चार्ट सभी, चाट देने का जब लक्ष्य रहता है तो करने वालों को विशेष अटेंशन रहता। आज की मुरली में था ना बाबा का, तो आप एक ऐसा प्रोग्राम बना लो कि हमें इसके रिजल्ट भी देने हैं और इसको करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बिजी हो, आपको कोई टेंशन हो गई हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो, आपका ये करने को मन ही ना करे। ये भी मनुष्य के मन की स्थिति होती है, इसको ना नहीं किया जा सकता, ये होती है। क्योंकि कभी कभी हमारे अपने ही 63 जन्मों के विकर्मों का फोर्स इतना ज्यादा होता है ब्रेन पर कि ब्रेन कुछ करना पसंद नहीं करता। ये एक ऐसी बाधा है जिसको मनुष्य को बहुत समझदारी से पार करना चाहिए। सबके जीवन में ये बाधा आती है, पर युवकों को कुछ ज्यादा आती है। मैं देखता हूँ माताओं को भी आती है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक क्या हो गया, न मुरली सुनने को मन करता है, न योग लगाने को मन करता है। सोमान जो हमें बहुत आनंद देता था, अब वो सूखा लगता है कि ये क्या है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ तो हूँ, इसमें क्या हुआ, मैं महान आत्मा हूँ, इससे क्या होता है, कहने से हूँ ठीक है, सूखापन आ जाता है। लोग मुझे अपने अनुभव सुनाते हैं ये। तो ऐसे समय को समझदारी से पार करना, क्या समझदारी होगी बोलो, कैसे बोलो, आपको जाननी चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि ये बाधाएं आएंगी। मैं आपको पहले से इसके लिए कह देता हूँ, ये आएंगी। कोई दिन ऐसा भी होगा जो आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा। मैं देखो एक टीचर बहन का अनुभव सुनाऊं, उसने मुझे कहा जैसे ही गुरुवार आता है मेरा योग पूरी तरह टूट जाता है, जबकि गुरुवार सबसे अच्छा दिन होता है, भोग लगाना होता है। वो सेंटर चलाने वाली बहन है। हम मुझे बहुत लज्जा आती है, मुझे बहुत भारी होता है कि आज का दिन सबसे सुंदर और मेरा योग नहीं लग रहा। जैसे गुरुवार बीता फ्राइडे आया फर्स्ट क्लास योग, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेहनत नहीं। जैसे कि गुरुवार उसके दिन उसके लिए बहुत बुरा दिन है। उसने पूछा मैं क्या करूं। दूसरी बहन, मैं रोज सवेरे उठ के बहुत अच्छा योग लगाती हूं लेकिन मेरा योग नहीं लगता, जैसे ही 5 बजते हैं फर्स्ट क्लास योग युक्त हो जाती हूं मैं, क्या करूं। तीसरी की समस्या थी गुरुवार और सैटरडे योग लगता ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर ली। ये सवेरे उठने वाली बहन ने कहा मैं 2 बजे उठी, मैं 3 बजे उठी लेकिन मेरा योग 5 बजे ही लगता है, तो क्या मैं न उठूं सो जाऊं। हैं? सोचने की बात। ये सब टाइम के इफेक्ट, अपनी किसी अंदर की निगेटिविटी का इफेक्ट, कुछ ना कुछ है। इसको पूर्ण रूप से कोई जान नहीं सकता कि क्या है। ब्रेन में कोई चीज फंक्शन ही नहीं करती ठीक से सवेरे, तो योग ही नहीं लगता। तो मैंने उसे कहा नहीं तुम उठो, 2 बजे उठने की जरूरत नहीं, 3:30 ही उठो, उठ के अव्यक्त मुरली पढ़ो, बाबा की कुछ लिखो, कुछ अच्छी क्लास सुन लो, 5 बजे से योग लगता है, 5 से ही लगाओ। तो क्या हुआ, कुछ दिन करने के बाद उसका 4 बजे से योग लगने लगा। तो हमें इन चीजों से निराश नहीं होना होता है, उस बैड टाइम को कुछ अच्छे उपायों के द्वारा हम पास करें। बैड टाइम जीवन में होता है, इसके लिए हमें तैयार रहना ही चाहिए। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसकी लाइफ में बैड टाइम ना आता हो, वो 1, 2, 4, 5 साल भी हो सकते हैं। एक कुमार, बहुत अच्छा कुमार, सेंटर का मुख्य कुमार, अच्छी सेवा करने वाला, अच्छी धारणाओं वाला योग युक्त, पिछले 6 साल से उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अभी मेरे से मिला, मैं ओडिशा में गया था, मुझे बताया कि अभी मुझे पता चला कि मेरे ऊपर केतु का बुरा इफेक्ट था। अब वो खत्म हुआ, मैं फ्रेश हूं, सब कुछ ठीक है। बहनों से लड़ाई हो रही है बात बात में, बीमार हो रहे हैं और बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, मन डिप्रेशन में है, परेशान हो रहा है मन, खुशी नहीं है, इस सब से उसे गुजरना पड़ा। और 6 साल उसने मुझे बहुत फोन किए होंगे, परेशान होता था तो मुझे फोन करता था, मैं क्या करूं। 6 साल पूरे हुए, अभी पूरे हुए 10-12 दिन पहले, सब फ्रेश हो गया। ऐसा बैड टाइम भी मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन वो बहुत हिम्मतवान कुमार रहा जो पीछे नहीं हटा। मैंने उसे इस बार भी बताया कि भाई तुम बहुत भाग्यवान तो हो ही, हिम्मतवान और पावरफुल भी हो। कहा अब मुझे लगता है कि मैंने 6 साल कैसे पार कर लिए। देखो कुमारों को ये बिल्कुल पर्सनल चीज है, कुमार कुमारियों को शादी कराने के लिए माँ बाप बहुत फोर्स कर देते हैं। इसके माँ बाप और मामा ने, तीनों ने मिलकर इतना फोर्स किया कि शादी नहीं करता इसको मरवा दिया जाए, और इस पे एक बहुत पावरफुल तांत्रिक प्रयोग कराया जिसको मारक मंत्र कहते हैं, मारक विद्या जो मार देती है। और ये अपनी कुर्सी पे बैठा था, पहले कमरे में काम कर रहा था, इसको बेचैनी होने लगी, ये कमरे से बाहर आके कुर्सी पर बैठा। कुर्सी बहुत अच्छी थी, प्लास्टिक वाली नहीं, मजबूत, और वो मारक मंत्र इसको नहीं लगा, इसकी कुर्सी को लगा, कुर्सी चूर चूर हो गई, ये गिर गया नीचे, और गिरने के बाद वो खेल 2-4 मिनट में समाप्त हो गया, ये फ्रेश हो गया। जब इसके इन तीनों ने देखा कि इस पे तो मारक मंत्र का प्रभाव भी नहीं पड़ा, तो तीनों आ गए उससे माफी मांगने। उन्होंने बताया, माफी मांगी, रियलाइज किया कि सचमुच तुम बहुत महान हो, शक्तिशाली भी हो, इस मारक मंत्र से कोई बच नहीं सकता, जरूर तुम्हारे साथ कोई बड़ी शक्ति है। तो देखो ऐसी ऐसी परीक्षाएं भी कुमार कुमारियों को देनी होती हैं। तो मैं उसे पक्का कराता रहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये उसका स्वमान बहुत पक्का हो गया, तो किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं हुआ। एक कुमार और मिला ऐसे ही मुझे अभी की यात्रा में, मेरे पास आया। अब उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी थी, मुझे लेने आया, बहुत महंगी गाड़ी थी। मैं देखा उसको, बड़ा कहा बहुत अच्छी गाड़ी भाई तुम्हारी तो। कहा भाई मैं आपके लिए खास आया हूँ, 3 घंटा दूर आया। क्या? मैं मरने के लिए चला गया था नदी के किनारे। सुनो इंटरेस्टिंग कहानी, मरने के लिए पता नहीं कहाँ से जेब में फोन भी चला गया मेरे साथ। ऐसे तो मरने जाता हूँ तो सब कुछ छोड़ के गया था, मोबाइल पता नहीं कैसे जेब में रह गया। तो मेरे पास आपका नंबर था, मैंने आपको वहां से फोन किया कि मैं मरने आ गया हूँ। तो मुझे याद आया, जब मुझे ऐसे कुछ फोन आते हैं, मैंने उसमें उसको हंसी में कहा तो मर जाओ ना, दिक्कत क्या है, इसके लिए परमिशन लेनी थोड़ा ही मेरी या बाबा की। मरने आए हो तो आनंद पूर्वक मरो, खुशी खुशी से मरो। कहने लगा नहीं यार मरना नहीं चाहता। देखो जो मरने जाते हैं वो सचमुच मरना नहीं चाहते। तो फिर मैंने उसको 2-4 बातें सुनाई, जीवन बहुत सुंदर है, इसको ऐसे नष्ट नहीं किया जाता है, मरने के बाद क्या क्या होगा, मैंने वो उसे बताया, वापिस आ गया बेचारा घर। तो तब से उसका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ गया, वो साहूकार हो गया, कार थी 26 लाख की, समझ गए ना कितना अच्छा उसका काम चला। तो ऐसी ऐसी चीजें जीवन में आती हैं। मरने से अच्छा है क्या? जीना। लेकिन कैसे जीना? मैंने उसे कहा मरते तो कायर हैं तुम, भगवान के बच्चे, कायर थोड़ा ही होते, तुम पावरफुल हो, मरने वालों को तुम्हें जीवन दान देना है, वापिस चलो। बस इतना सुनते ही उसमें एनर्जी आ गई और वापिस हो लिए। ऐसे 4 केस पिछले बार मेरे पास आए जिन्होंने मरने से पहले मुझे फोन किया। एक रेलवे लाइन पे पहुंच गया था तो वो भी वापिस आया, चारों वापिस आ गए। तो निराश नहीं होना है जीवन में कभी भी, बहुत अच्छी स्थिति अपनी बनानी है। आप सभी में भी जो बिल्कुल यंग हैं उनके सामने ये समस्या आएंगी, आती हैं, क्योंकि माँ बाप कन्याओं के लिए चाहते हैं भाई हम इनके लिए कैसे जीवन भर झंझट रखेंगे, शादी करें ये अपने घर जाएं, कुछ भी करें, हम मुक्त। वो इसलिए शादी कराना चाहते हैं कुमारों के लिए, क्योंकि समाज उन्हें कहता है एक लड़का है दो लड़का है, ये करो वो करो, तो आप पे दबाव आता है। लेकिन इस दबाव को समाप्त करने के लिए अगर आप ये सब अच्छे अभ्यास करते रहेंगे तो उनके संकल्प स्वतः ही शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे कुमार और कन्याएं भी देखे हैं जिनके माँ बाप उन्हें शादी के लिए बिल्कुल नहीं कहते, कहना भी उन्हें हिचक होती है कि हम ये कैसे कहें, ये तो हमारे घर में देवी है। कुमारों की भी, कईयों की मेरे पास ऐसी सत्य घटनाओं की सूचना है कि उनके माँ बाप उन्हें शादी के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं ये लड़का तो हमारे घर में देवता है, महान आत्मा ही है हमारे घर में कोई, तो ये आपके वाइब्रेशन से होगा। आप अपने अंदर एनर्जी भरें, फास्ट पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, बोलो फीलिंग नहीं आती है। हाँ, उसके लिए वैसे मैं आपको राय दूंगा, स्वमान की सीडी मिलेगी आपको काउंटर पे, उसको आप जरूर ले जाएं, उसमें स्वमान पर कैसे मनन करना चाहिए वो डिटेल है। मैंने 3 साल पहले रिकॉर्ड की थी चैनल के लिए, अब उन्होंने काउंटर पे रख दी है वो। रियली मैंने भी सुनी तो मुझे बहुत नशा चढ़ गया, मैंने आधा ही घंटा सुनी थी, उसमें आधा घंटा तो एक स्वमान का है तो 14 स्वमान है, 7.5 घंटे की है टोटल डीवीडी, तो उसमें आपको चिंतन मिलेगा। चिंतन से नशा चढ़ता है, एक्सेप्टेंस से नशा चढ़ता है। इम्पोर्टेंट बातें यही दो हैं कि हम एक्सेप्ट करें मैं एक महान आत्मा हूं, इसे एक्सेप्ट करें, रोज करें, इस पे चिंतन करें, मैं महान हूं तो मुझे कैसा होना चाहिए, मैं महान आत्मा हूं तो मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मैं महान हूं तो मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये चिंतन उस स्वमान की डेप्थ में ले चलेगा और अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे मैं एक महान आत्मा हूं तो आप चिंतन करेंगे किसने कहा ये मुझे, मैंने तो नहीं कहा अपने को, उसने कहा जो मुझे जानता है। चलो पावरफुल योग करेंगे परम धाम में बाबा के स्वरूप पर स्थित। एक बात मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा, लिखने का प्रयोग। आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी करेंगे और अपने को रोज आधा घंटा अवश्य देना है सबको। स्पिरिचुअल एनर्जी से भरना है, ये एनर्जी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है बाबा की बातें सुनकर और अनुभवों से कि अगले 5-7 साल में संसार का हाल बहुत बिगड़ जाएगा। लोग जिंदे होते भी जैसे जिंदे नहीं होंगे, भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे खत्म करो इस दुनिया को, मानसिक प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगी। विदेशों में तो बहुत ज्यादा, पर भारत में भी बहुत, और उससे अगले 5-7 साल में संसार खाली हो जाएगा आप सबके लिए, देवताओं के लिए खाली हो जाएगी धरती। इसलिए हमें स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने को भरपूर करना है। सुनना पड़े, त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, चलेगा, लेकिन आप ऐसा मैनेज करें अपनी दिनचर्या को कि अपने लिए समय अवश्य निकले। उससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, आपका कामकाज बिल्कुल और जल्दी पूरा हो जाया करेगा। लेकिन मनुष्य जब अपने को समय नहीं देता तब उसकी शिकायत होती है, हम बहुत बिजी हैं। अपने को समय दें, और अपने को समय देने का अर्थ है अपने माइंड को एक बार सब चीजों से खाली कर दें। रोज एक बार करना है सबको ये काम। काम सहज नहीं है, पर इसको सहज बनाना है। कोई भी संकल्प, कोई भी बात आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है उसको आपको शांत करना है। इसलिए लिखने की कला जो है, लिखने की जो एक टेक्निक है, इसको आप यूज करना। क्या है वो? जो भी आपका लक्ष्य हो, चाहे रोज का लक्ष्य हो, उसे सवेरे कम से कम 5 बार लिख देना कागज पर। जीवन का लक्ष्य भी आप लिख देना 7 बार अपने कागज पर, एक पर्सनल डायरी में। जीवन का लक्ष्य, केवल लक्ष्मी नारायण बनना नहीं, लक्ष्य, असली लक्ष्य जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सबको डेडिकेट करना चाहते हैं, वो लक्ष्य आप लिखना। समझ रहे हैं मेरी बात? आप एक लक्ष्य बना लें कि मुझे रोज अपना योग का चार्ट 4 घंटे तक करना है। मान लो आप ये एक लक्ष्य बनाते हैं, इसको आप सवेरे 7 बार लिख दो। आज मैं अपना योग चार्ट 4 घंटे करूंगी, आज मेरा योग का चार्ट 4 घंटे होगा, ऐसे। तो क्या होगा? आपके ब्रेन की संपूर्ण एनर्जी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाएगी। इस विद्या का आप प्रयोग करें। कोई पीछे की बात आपको डिस्टर्ब कर रही हो उसको कागज पे लिखो। आज की कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही हो उसके लिख दो बाबा के नाम। किसी को आपको देने की जरूरत नहीं, उसको जला दो। लिखने से बहुत चीजें ठीक होती हैं। विशेषकर आप लक्ष्य लिखकर देखो। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य आपका हो उसे आप 21 दिन तक लिख दो रोज सवेरे, 3 बार लिख दो रोज, देखो उसका परिणाम कितना सुंदर होगा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और ये सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी आपको तैयार करेगी उसको अचीव करने के लिए। पसंद है? ये चीजें आपको करनी है। तीव्र पुरुषार्थ में बाबा जो चाहते हैं हम अपने संस्कारों को परिवर्तित करें। संस्कार किसके होते हैं? संस्कार खतरनाक, कौन से विकार के? 2 के ही, बच्चू बादशाह, आगे बोलो, पीरू वजीर। क्रोध का संस्कार भी कम थोड़ा ही है। किसी ने मुझे फोन किया, बताने की तो बात नहीं, किसी का नाम नाम। मुझे इतना गुस्सा आ गया एक बहन पर कि मैंने कुर्सी तोड़ दी, कंप्यूटर का जो कुछ आगे पीछे का है ना वो तोड़ डाला, बहुत कुछ तोड़ फोड़ की, फिर मेरा गुस्सा शांत हुआ। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैंने यज्ञ का नुकसान कर दिया, मेरे को बहुत गुस्सा है, मुझे विधि बताओ इससे छूटने की। मैंने उसे कहा बस अब तुम छूट ही जाओगी क्योंकि तुमने रियलाइज कर लिया कि मेरे में बहुत गुस्सा है, खुद बता रही मैंने इतनी तोड़फोड़ कर दी। तो देखो क्रोध का संस्कार भी बहुत खतरनाक है, काम विकार का संस्कार, क्रोध का संस्कार और अहंकार से संबंधित कुछ संस्कार, बस इनको हमें तेजी से खत्म करना है। खत्म करने की पहली विधि है अपने उस गलत संस्कार को जानना, उसकी अवेयरनेस होना। जैसे किसी का संस्कार टकराव का है, अहंकार वश टकराव में आते हैं, तो प्राय टकराव में आने वाला व्यक्ति दूसरों की शिकायत करेगा, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। जिस क्षण उसको रियलाइज हो जाएगा कि मेरा अहम टकरा रहा है और उस पे वो कार्य करना प्रारंभ करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको तीव्र पुरुषार्थ के लिए दो बहुत बड़ी चीज कहना चाहता हूं, वो है बहुत बड़ी पर आप उससे छोटी बनाएं, इजी करें। जीवन में रहते हुए दो शब्द इंग्लिश के, नो रिएक्शन नो इफेक्ट, करें आप इस पे काम। नो रिएक्शन, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, बहुत जगह चित शांत नहीं होता, ईगो रहता है तो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, उससे बहुत गड़बड़ होती है जीवन में, क्रोध आता है, हम कुछ भी बोल देते हैं, धैर्यता नहीं रहती है, शांति खत्म हो जाती है, बहुत चीजों को जन्म मिलता है इससे। हम अपने चित्त को ऐसा शांत करें, संकल्प को ऐसा कंट्रोल में लाएं कि हम रिएक्ट न करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने को संभालेंगे तो पता चलेगा कितनी अच्छी बात हो गई है, हो सकता है या नहीं। नो रिएक्शन, किसी ने कुछ कहा चुप रह सकते हैं, बोलो, यंग बैठे हैं बहुत लोग, चुप रह सकते हैं या कठिन काम है। कोई कुछ भी कह दे, थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए नो रिएक्शन में आ जाओ, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 सेकंड अगर कंट्रोल कर लिया तो सब कंट्रोल्ड, कोई कुछ भी बोल दे, कुछ बियॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर की बात आ जाए, हमारे लिए कुछ ज्यादा ही गलत कमेंट्स कर दें, हम जरा 10 सेकंड अपने को शांत रखना सीख लें, बहुत महानता आ जाएगी जीवन में, देखने वालों को महानता नजर आएगी। तुरंत रिएक्ट करने वाले, उससे लगता है कि इस व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है, ये हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, सुनने से पहले ही रिएक्शन कर देते हैं, अब सेंटेंस पूरा नहीं होगा उससे पहले ही पूरा करने ही नहीं देते हैं। नो रिएक्शन नो इफेक्ट, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे तीव्र पुरुषार्थ करने वालों को काम करना पड़ेगा। नो इफेक्ट आते ही परफेक्ट हो जाएंगे, ये तो सबसे ऊंची स्थिति है, पर इस पर आप प्रैक्टिस चालू करें, एक दिन में नहीं होगा पर होगा। नो इफेक्ट की स्थिति के लिए तो लंबा समय लगता है, पर नो रिएक्शन की स्थिति हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। नो इफेक्ट, दूसरों के शब्दों का इफेक्ट नहीं, दूसरों के व्यवहार का इफेक्ट नहीं, दूसरे अपमान करते हैं उसका इफेक्ट नहीं, हमारे बारे में गलत बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका इफेक्ट नहीं। आप लिस्ट बना सकते हैं 25 बातों की जिनके इफेक्ट से हमें मुक्त होना है, ये उनके लिए होगा जो समय से पहले परफेक्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में लोगों के ब्रेन पर बहुत चीजों का इफेक्ट होगा। मुझे बाबा की कुछ बातें याद रहती हैं जो मुरलियों में आई हैं, साकार में आप सबने भी सुनी है, मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं, बहुत इफेक्ट होगा मनुष्यों के ऊपर, क्योंकि विनाश माना, मैं इसको इस भाषा में कहता हूँ, मेरा और मेरे सब जाएंगे, मेरा और मेरे, बहुत इफेक्ट होगा ब्रेन पर। इसलिए बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आएगी। हमें बहुत कुछ करना होगा तब। इसलिए अपनी स्थिति ऐसी हो कि जो कुछ होगा उसे स्वीकार कर लें। अब इस धारणा पे ध्यान देना, जीवन में हम उन चीजों को स्वीकार करते चलें जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। अभी से शुरू कर दें। बहुत चीजें हर एक के जीवन में ऐसी हैं जिन पर हमारा अधिकार नहीं, उन्हें स्वीकार करके जीवन को एंजॉय करें। मैं देखता हूँ, मेरे पास बहुत लोगों के अनुभव हैं। एक बुजुर्ग माता, उसका जवान लड़का एक मृत्यु हुई, उसका पति मृत्यु हुई, वो अकेली, स्टिल सी वाज एंजॉयिंग हर लाइफ। बहुत अच्छी स्थिति मैंने इस माता की देखी। एक माता अभी मुझे मिली, माँ बाप दोनों बहुत अच्छे बिजनेसमैन, दो यंग लड़के एक साथ कार में बैठकर अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे, कहीं कार की टक्कर हुई ट्रक से, चारों की मृत्यु हो गई तत्काल। दो ही लड़के यंग बिल्कुल, 25 और 28 साल के, दोनों की मृत्यु। लेकिन माँ की स्थिति बहुत अच्छी, मुझे अपनी दुकान में ले गए, बहुत बड़ा स्टोर था इस हॉल जैसा, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी रखी हुई। कहा बाबा हमारा सब कुछ हो गया, हमने स्वीकार कर लिया, मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं। मैंने पूछा माता जी से, आपको तो याद आती होगी, आप रोती होगी जरूर। कहा नहीं रोती थी, पर अब वो सब पूरा हो गया। तो देखो ये स्थिति है ना, और किसी किसी की छोटी सी बात में स्थिति बिगड़ी रहती है। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मन सदा खुश रहे, परेशान नहीं। मन खुश रहेगा तो एनर्जी मिलती रहेगी। मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी जो मुझे बहुत प्रिय लगी, कही तो साइकोलॉजिस्ट ने, लेकिन इतनी सुंदर है। देखिए, इस संसार में हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो हमारे संकल्प जब प्रकृति से मिलते हैं तो प्रकृति हमें वही रिटर्न करती है। ये एक बहुत बड़ी फिलोसोफी है कि किसी मनुष्य को जो कुछ मिल रहा है वो किस आधार से मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा वो किस आधार से नहीं मिल रहा है। तो उसने बहुत अच्छी बात कही कि जिस मनुष्य के पास खुशी और प्रेम है उसे इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं, क्योंकि उसके खुशी और प्रेम की वेव जब प्रकृति से मिलती है, रिएक्शन होता है दोनों में, तो सब कुछ आ जाता है, खुशी और प्रेम। बाबा भी इन चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं, सब आत्माओं के लिए प्रेम और जीवन खुशियों से भरा हुआ। तो सभी को ध्यान देना है तीव्र पुरुषार्थ के लिए कि हमें जीवन को खुशियों से भरपूर रखना है। बातें आएंगी और चली जाएंगी। बाबा के शब्द बहुत सुंदर हैं, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, जो बातें जाने वाली हैं तो उनसे अपनी स्थिति को क्यों बिगाड़ते हो। तो मैं आप सबको ये स्लोगन देना चाहता हूँ, आप नोट कर लें, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। पसंद है? कुछ भी हो जाए मुझे अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है। बहुत काम आएंगी ये दोनों बातें आपको, मुझे बहुत काम आई जीवन में। संकल्प बहुत बड़ी पूंजी है, हमारा खजाना है, उसे हम छोटी बातों में वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आप धन कमाते हैं मेहनत से, तो आप अपने धन को ऐसी वैसी जगह वेस्ट नहीं करेंगे। संकल्प भी हमारा खजाना है, इसे हमें छोटी बातों के पीछे वेस्ट नहीं करना है, ये चिंतन आपको करना है। तो रोज मैंने आपको कहा आधा घंटा आप अपने को अवश्य देंगे और उस आधे घंटे में दो काम करेंगे, चित्त को शांत करना और खुशी से भरना। अब हम थोड़ी चर्चा योग पर कर लेते हैं। आप में से कौन कौन अपने योग से सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, योग एक ऐसा सब्जेक्ट है ही जिसमें मेहनत है। देखो मनोविज्ञान के अनुसार अब क्या मेहनत है, मनुष्य के मन में एक दिन में 60,000 संकल्प चलते हैं, 60,000 पर डे। पावरफुल योग कितने संकल्प सारा दिन में चलें? सोच लो आप कितने संकल्प चलें सारा दिन में, कैसे चलें? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मनुष्य के मन में एक मिनट में 20 से 25 संकल्प उठते हैं। हम सब जो हैं, आप अपने काम में बिजी रहते हैं तो ये स्पीड कम हो जाती है। जब आप काम करेंगे कंप्यूटर पर तो आपकी स्पीड बहुत कम रहेगी। सोचो आप सतयुग में जब हम देवता थे हमारे मन की स्पीड कितनी होगी पर मिनट? पर मिनट हाउ मेनी थॉट्स? 5 हैं? 1 या 2? ये तो ज्यादा कम कर दिया आपने। तो योगी बन जाएंगे देवता भी फिर। 8-10 संकल्प, 8-10 संकल्प, ऐसी स्पीड हम ले आए इस जीवन में, बहुत सुखी हो जाएंगे। फिर योग फटाफट लगेगा, पावरफुल योग, ज्वालामुखी योग, बीज रूप योग, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। अर्थात एक संकल्प में स्वयं को स्थित करना। सोच लें हमें 5 मिनट के लिए पावरफुल योग करना है तो 5 मिनट हम एक संकल्प के साथ बाबा पर स्थिर हो जाएं, ये ज्वालामुखी योग हो जाएगा। मन की स्पीड अगर बहुत है, मन में अगर हमने पॉजिटिव थॉट्स भर लिए हैं, मन में पॉजिटिव थॉट्स से भी एक सुंदर शब्द है हमारे पास, हमारे ज्ञान के थॉट्स, हमारे बहुत महान थॉट्स, इनको क्या शब्द देंगे हम? पॉजिटिव थोड़ा छोटा शब्द लगता है मुझे, मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स, डिवाइन थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, ये हमारे पास हैं। इस खजाने को हम बढ़ाते चलें। मैं आपको एक अमृत वेले को एंजॉय करने की छोटी सी विधि बता देता हूं। ये आप अपने पास 25 सुंदर संकल्प लिखें जो आपको प्रिय हो, मुरलियों से मिल जाएंगे आपको, आप अपने भी क्रिएट कर सकते हैं। और सवेरे उठकर 3 मिनट में उन्हें पढ़ लें, रोज पढ़ेंगे आप उन्हें, फिर देखो सवेरे का समय कितना सुंदर बीतता है। क्योंकि सवेरे के समय जो गड़बड़ हो रही है वो पता क्या है कि रात के इफेक्ट के कारण, पिछले दिन के इफेक्ट के कारण, भोजन के इफेक्ट के कारण, किसी विशेष बीमारी के इफेक्ट के कारण, पेट में एसिडिटी गैसेज हो गई हो उसके इफेक्ट के कारण ब्रेन एक्टिव नहीं रहता। और हम सोए थे, उठे हैं तो ब्रेन एक्टिव नहीं है, हमें उसे एक्टिवेट करना है सुंदर विचारों से। बहुतों ने ये कला अपनाई कि उठते ही एक अव्यक्त मुरली पढ़ ली 10 मिनट, उसके बाद योग बहुत अच्छा लगा। कैसे विचार लिखेंगे आप, मैं 1-2 आपको बता देता हूं। मुझे एक बाबा का एक महावाक्य बहुत सुंदर लगता है, दुनिया में कोई ऐसा दर्पण नहीं जिसमें लोग भगवान को देख सकें, तुम अपने जीवन को, अपने चेहरे को ऐसा दिव्य दर्पण बनाओ जिसमें सबको बाबा दिखाई दे। उससे ही पढ़ लें आप इसे, उससे ही आप सोच लें कि सारा संसार मेरी वाइब्रेशंस की इंतजार कर रहा है, मुझे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर दुखियों के दुख हरने हैं। चेतनता आ जाएगी ना, नींद खत्म हो जाएगी एकदम, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, काम करने लगेगा। उस फिल्म में संसार की अनेक आत्माएं बाबा वतन में एडवांस पार्टी मेरा आह्वान कर रहे हैं, कार्यों को पूर्ण करो, ये याद करें। जो संकल्प आपको पसंद हो, जो संकल्प पसंद हो, मुझे तो ये बड़ा काम करना है संसार के लिए, सवेरे उठते ही याद कर लो, तो अपने कार्यों की स्मृति हमें जागृत करती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जैसे आपको अगर ऑफिस 6 बजे जाना हो सवेरे, तो आप 5 बजे उठ ही जाएंगे ना, और न जाना हो तो मन में संकल्प रहेगा चलो थोड़ा लेट उठेंगे। हमारे कार्यों की स्मृति हमें एक्टिव रखती है। तो सवेरे उठ के आप ऐसे थोड़े सुंदर विचार कर लेना। मैंने आपको जो 7 पॉइंट बताई उनसे ज्वालामुखी योग आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कामकाज में चलते फिरते आप अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, और ये याद रखेंगे जो स्मृति हम बार बार करेंगे वही हमारा स्वरूप बन जाएगा। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप। एक चीज और मुझे याद आ रही है, आप सबको मैं बताना चाहूंगा, सब कॉन्शियस माइंड की है। सवेरे उठते ही कोई भी कमजोर संकल्प नहीं करेंगे, सवेरे उठते ही नहीं, जीवन में कभी भी कमजोर संकल्प नहीं। एक सुंदर सिद्धांत आप लिख लें अपने पास, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। जो कुछ हम बार बार सोचेंगे उसको हम क्रिएट करेंगे। मान लो कोई सोचता है मैं ये काम तो करती हूँ पर पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, और सोचने वाला अपने को बहुत समझदार समझता है कि मैं ठीक सोच रहा हूँ, ऐसे सोचना ही पड़ेगा, सफलता मिलेगी या नहीं। आज किसी का ऐसा ही फोन था सवेरे कि मैंने एक बिजनेस किया था, छोड़ दिया था, अब दोबारा करना चाहती हूँ पर मन बार बार कंफ्यूज हो रहा है सफलता मिलेगी भी या नहीं। समझ लें आप अच्छी तरह, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसको हम क्रिएट करेंगे। सब चेक करो अपने को, हम कोई गलत संकल्प अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर तो नहीं रहे हैं। ध्यान देंगे मेरी इस बात पर, किसी ने ये संकल्प तो नहीं भर लिया, पता नहीं पवित्रता के मार्ग पर चल पाएंगे या नहीं। कुमार कुमारियां ध्यान दें, ये संकल्प बहुतों के मन में उठता है, ये बहुत कमजोर संकल्प है। क्या संकल्प रखना चाहिए सुनाओ, ये तो आप सुनाएंगे ना। पावरफुल संकल्प सुनाओ, ढीला ढीला सुना रहे आप तो हैं? हाँ बहुत अच्छा, ऐसे बताओ जरा 2-4 संकल्प। हाँ, हमसे केवल एक जन्म मांगा तो ऑन एनी कोस्ट आई विल फॉलो इट। संकल्प करें दृढ़, संसार की कोई शक्ति मुझे इस मार्ग से हटा नहीं सकेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई गलत संकल्प न भरें। भरते हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं, भरते हैं, पता नहीं ये होगा या नहीं। पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, एक डर के संकल्प होते हैं। ये पता नहीं शब्द खत्म करके एक संकल्प, यही होगा। आप बिल्कुल पक्का कर लें, अगर आप ये अभ्यास करते हैं मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, बाबा की शक्तियाँ मेरे पास हैं, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए जो मैं सोचूंगा वही होगा। लेकिन अपने संकल्प को एक ही करो, एक दो नहीं, उसमें कंफ्यूजिंग नहीं, एक डिटरमाइंड थॉट। इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो सवेरे उठते ही दो चार संकल्प रोज करेंगे आप। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, एक संकल्प। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। पांच संकल्प रोज करेंगे उठते, खुले दिल से करेंगे। पसंद है ना, तो निगेटिविटी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अब हम चाहेंगे थोड़ा सा योग अभ्यास कर लें। चलो गीत भी बजेगा, लाल लाइट कर दे भाई। देखिए योग अभ्यास की सफलता के लिए सभी अपने को इस तरह ही कमेंट्री दिया करें जैसे अब हम देंगे। ये एक छोटा सा सैंपल होगा और योग की सफलता के लिए कमेंट्री यानी सुंदर संकल्प अपने को देना सबसे अच्छी विधि है। अपना बहुत तेजस्वी स्वरूप देखेंगे, बिल्कुल मगन होके करेंगे। भ्रकुटि सिंहासन पर मैं बहुत तेजस्वी आत्मा विराजमान हूँ। मेरा प्रकाश संसार की सभी आत्माओं से बहुत अधिक है। मैं स्वराज अधिकारी हूँ। भ्रकुटि मेरा सिंहासन है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें मेरे ब्रेन में और पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंग अंग को शीतल कर रही हैं। Thank you. मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, कमलासन पर हूँ, मेरे अंग अंग से चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। विजुअलाइज करें अपने को, अब यहाँ से मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक में, आकाश के पार चारों सफेद प्रकाश, सामने से आ रहे हैं बाप दादा, बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है, बिल्कुल क्लियर देखें बाबा को। बाबा मेरे पास आ गए और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बिल्कुल समीपता फील करें, बाबा पास खड़े हैं वरदानी हाथ सिर पर। अब यहाँ से मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम शांति धाम में, अपनी मुक्त अवस्था में शांति सागर के पास, शांति धाम की संपूर्ण शांति और शांति के सागर की शांति मुझ में समाने लगी। डीप साइलेंस, अब सामने हैं ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, जिनके प्रकाश से सारा ब्रह्मलोक प्रकाशित हो रहा है। बुद्धि उन पर स्थिर, ज्ञान सूर्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम दोनों नीचे उतरते हैं, नीचे मैं चमकती हुई मणि, ऊपर सर्वशक्तिवान, दोनों नीचे आ रहे हैं। मैं आत्मा आ गई अपने शरीर में और सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर छत्र छाया। इस तरह कमेंट्री के साथ योग किया करेंगे तो पुरुषार्थ आप तेज हो जाएगा, धीरे धीरे स्थिरता आएगी और पावरफुल योग चलते फिरते भी किया जा सकेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।